आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार बच्चों, क्या आप सब रेडी हैं अपना आगे का अभ्यास कार्य पूरा करने के लिए? तो हमने पिछले ऑडियो में शब्दार्थ कर लिया था, उच्चारण के लिए शब्द कर लिए थे। आज हम करेंगे सोचे और बताए से, ठीक है? तो पेज नंबर 87 पे आ जाओ आप लोग। पहला प्रश्न है, राजा उत्तानपाद की रानियों के क्या नाम थे? तो पहले मुझे ये बताओ उनकी कितनी रानियाँ थी? दो रानियाँ थी, ठीक है। बड़ी वाली रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का सुरुचि। तो इससे पता चलता है कि उनकी पत्नियों का नाम सुनीति एवं सुरुचि था। प्रश्न नंबर दूसरा हम देख लेते हैं। सुरुचि ने ध्रुव के साथ कैसा व्यवहार किया? तो जब ध्रुव था, वो अपने छोटे भाई उत्तम को अपने पिता के गोद में खेलते हुए देखता है, तो ध्रुव का भी मन करता है कि वो भी जाके अपने पिता के गोद में खेले। जब वो उछलकर दौड़ता हुआ अपने पिता के गोद में जा बैठता है, तो ये देखकर जो सुरुचि है, जो छोटी रानी है, उसको ये बात पसंद नहीं आती। तो फिर सुरुचि ध्रुव को उनकी गोद से उतार कर बोलती है कि तुम्हारी यहाँ कोई स्थान नहीं है, तुम्हारा यहाँ अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वो उसे काफ़ी क्रूरता पूर्वक बोलती है, काफ़ी कठोरता पूर्वक बोलती है ना, प्यार से नहीं बोलती। तो आप लिख सकते हैं कि सुरुचि ध्रुव से काफ़ी कठोरता पूर्वक बोलती है और उसका मजाक उड़ाती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सुनीति किस बात से घबरा गई थी? जब ध्रुव अपना अपमान सहन नहीं कर पाता पूरे भरी सभा में, तो वो रोता हुआ, वो चुपचाप पहले तो दरबार से निकल जाता है, फिर रोता हुआ दौड़ते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाता है और उसके गोद में सिर झुकाकर बहुत रोने लगता है। तो सुनीति ध्रुव से पूछती है कि पुत्र क्या हुआ? तो ध्रुव बहुत बताने के बाद बताता है कि जो भी उसके साथ घटना हुई थी। तो ये सुनकर सुनीति को काफ़ी दुख होता है और फिर वो कहती है कि तुम्हारी सारी दिक्कत भगवान खत्म कर देंगे। तो ध्रुव जो है वो भगवान से मिलने की हट करता है कि मुझे मिलनी है भगवान से, मैं जंगल जाऊंगा, मैं वहाँ ईश्वर से मिलूंगा, ताकि ध्रुव की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो ये जंगल जाने की बात सुनकर जो सुनीति है, उसकी माता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा उठती हैं। तो ये हो गया। फिर आ जाते हैं लिखे, और तो की पर आदि शब्द लगाकर वाक्य पूरे करो। आपके वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं और खाली स्थान दिया है। ऑप्शंस हैं आपके और, तो, की, पर। तो इन इन सारे ऑप्शंस में से जो भी सही है उसको लगाकर आपको वाक्य को पूरा करना है। तो पहला वाक्य हम देख लेते हैं। ईश्वर ने चाहा - तेरी मनोकामना पूरी होगी। तो इसमें क्या आ सकता है? ईश्वर ने चाहा और तेरी मनोकामना पूरी होगी, ये सही नहीं लग रहा है ना। आगे देखते हैं। ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है ना। अब कंफर्म करने के लिए हमें क्या, ये सारे वाक्य जो हैं आपके पाठ के अंदर से ही हैं। तो जैसे अगर हम देखना चाहें कि हमारा वाक्य सही है या गलत, तो देखो आप अपने बुक के पेज नंबर 84 पे आ जाओ। वहाँ है ईश्वर ने, बुक 84 के सबसे लास्ट वाले लाइन पे, चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ चाहा की बात क्या है? तो इस वाक्य में भी क्या आएगा? तो है ना। तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, - व टस से मस नहीं हुआ। तो क्या आ सकता है यहाँ? तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, परंतु के अलावा और हम क्या लिख सकते हैं? पर या लेकिन। तो हमारे ऑप्शन में है पर, तो हम लिख सकते हैं तपस्वी ने ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तीसरा वाक्य है, ध्रुव दौड़ता हुआ गया, डैश राजा की गोद में बैठ गया। तो इसमें आ जाता है, ध्रुव दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में बैठ गया। देखो, अगर आपको वाक्य पूरा करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप सारे वर्ड्स को ट्राई कर लो, ठीक है। जितने भी आपके शब्द दिए हैं सबको उस रिक्त स्थान पर बैठा बैठा कर देख लो, जो सही लगेगा वो सही है, है ना। क्योंकि वहाँ आपकी परीक्षा में आपका पाठ तो पूरा नहीं दिया जाएगा, अगर तो हम देख के उसमें से लिख भी नहीं सकते। अगर पाठ दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न दिए हैं और आपको ना समझ आ रहा हो तो आप हर एक शब्द को लगा कर देखो, जो सही लग रहा हो आप उसे लिख लो, ठीक है। तो हमने तीसरा वाक्य कर लिया और यहाँ पे आएगा और। चौथा वाक्य देखते हैं, सुरुचि ने कहा, डैश अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, सुरुचि ने कहा कि, है ना, कि आएगा ना, सुरुचि ने कहा कि अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अभी जैसे आप अपने किसी दूसरे दोस्त की बात बताते हो तो आप ऐसे कहते हो ना कि उसने ऐसा कहा कि, वैसे यहाँ भी की है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा वाक्य पूरा करने वाला। अब है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। अब आपके सामने वाक्य दिए गए हैं और वाक्य के सामने दो ऑप्शंस हैं, इनमें से सही क्या है वो आपको चुनकर इसमें लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, साथ में करेंगे। पहला वाक्य है, राजा उत्तान पार डैश राजा थे। कैसे राजा थे, महाप्रतापी राजा थे या अत्याचारी राजा थे? आपके पाठ के शुरू में ही ये लाइन दी गई है और वहाँ लिखा है महाप्रतापी राजा थे, तो पाठ के हिसाब से ही हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पाठ के हिसाब से महाप्रतापी राजा थे, ठीक है। ख है, सुनीति के पुत्र का नाम डैश था। सुनीति के पुत्र का नाम क्या था, उत्तम या ध्रुव? ये तो आपको पता ही है, ध्रुव। बहुत बढ़िया। ग है, ध्रुव तपस्या करने डैश गया। ध्रुव जो था वो तपस्या करने कहाँ जाता है, जंगल में जाता है या मंदिर में जाता है? जंगल में जाता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ जंगल लिख लीजिए। चौथा घ आपका वाक्य है, ईश्वर ने उसकी डैश से प्रसन्न होकर हो वरदान दिया। ईश्वर ने उसकी भक्ति से या शक्ति से, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है जंगल जाकर, है ना। एक तपस्वी जो उन्हें मिलते हैं, वो तपस्वी ध्रुव को एक मंत्र देते हैं, तो वो उस मंत्र की जाप करता है, तो भक्ति करता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा भक्ति। पांचवा वाक्य है, नवा वाक्य है, ध्रुव राजा बना और रानी डैश राजमाता बनी। ध्रुव तो राजा बना और रानी सुनीति या सुरुचि, दोनों में से कौन राजमाता बनती है? ध्रुव की माँ सुनीति थी, तो सुनीति राजमाता बनती है, ठीक है। यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न भी हो गया। तीसरा प्रश्न है, ध्रुव किसका पुत्र था? ये तो बहुत इजी है, किसका पुत्र था? सुनीति का। बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न है, सुनीति ध्रुव के साथ महल में अकेली क्यों रहती थी? क्यों रहती थी बच्चों? क्योंकि जो राजा थे, उत्तानपाद राजा थे, वो अपनी छोटी रानी की बात जो है वो ज़्यादा मानते थे। उनका कहा जैसे वो कहती थी वो वैसे करते थे। छोटी रानी का नाम था सुरुचि और उनके पुत्र का नाम था उत्तम, ठीक है। तो जैसा हमने पाठ में देखा था कि जो राजा हैं वो छोटी रानी का कहा ज़्यादा मानते थे और बड़ी रानी को उतना सम्मान आदर नहीं मिलता था, जिसके कारण जो राजमहल में भी और जितने लोग थे वो भी सुनीति और उसके पुत्र को, ध्रुव को, ज़्यादा सम्मान नहीं देते थे, जिसके कारण वो अकेले रहती थी, ठीक है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि क्योंकि रानी सुनीति और उनके पुत्र को ज़्यादा सम्मान और आदर नहीं मिलता था, जिसके कारण वो अकेले रहती थी, ठीक है। अभी पांचवा प्रश्न है, सुरुचि ने राजा की गोद से ध्रुव को क्यों उतारा? क्योंकि जब ध्रुव दौड़ता हुआ अपने पिता की गोद में जा बैठता है, क्यों बैठता है वो? क्योंकि वो भी चाहता है कि जैसे उसका छोटा भाई उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा है तो मैं भी खेलूं। लेकिन जो सुरुचि है, उत्तम की माँ है, वो ये चीज़ देख के बिल्कुल उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है ना। वो चाहती हैं कि सिर्फ उनके बेटे का उनके बेटे को प्रेम मिले, उनके बेटे का राज हो, तो इसलिए वो ध्रुव को राजा के गोद से उतार देती हैं। ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 88। छठा प्रश्न है, ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? अब क्योंकि ध्रुव जो था उसकी राजमहल में बहुत ज़्यादा अपमान हुई थी, सुरुचि रानी ने उसको काफ़ी ज़्यादा अपमानित किया था, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया और वो भागते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाता है। तो सुनीति माता कहती हैं कि कोई बेटा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी मनोकामना ईश्वर पूरी करेगा। तो अब ईश्वर को पाने के लिए वो जंगल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो काफ़ी सारे तपस्वी से मिलते हैं, वहाँ पे वो तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और ईश्वर से मिलकर मिलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो जंगल गए। सातवां प्रश्न है, ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति कैसे की? तो कैसे की होती है ध्रुव ने ईश्वर की भक्ति? काफ़ी तपस्या की होती है उन्होंने, है ना। वहाँ पे जब वो जंगल जाते हैं तो उनको एक तपस्वी मिलते हैं जो कि उनको एक मंत्र देते हैं और यमुना नदी के किनारे जो ध्रुव है वो जाकर बैठ जाते हैं। फिर दिन बीतते जाते हैं, पहले तो वह कंदमूल खाकर रहने लगे, ठीक है, फिर वह केवल पानी पीकर रहने लगे, फिर वह सिर्फ पानी भी उन्होंने छोड़ दिया और निराहार रहकर भजन करने लगे, ठीक है। तो काफ़ी तपस्या करने के बाद उन्हें ईश्वर से मिलने की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो हमें इससे समझ आता है कि काफ़ी ज़्यादा तपस्या करने के बाद जो ध्रुव है वो ईश्वर से मिल पाए। फिर आ जाता है आपकी भाषा की बात, जो कि व्याकरण है, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से के जोड़े बनाए, जोड़े बनाने आपको, जैसे एक उदाहरण दिया है नाना नानी, तो ये जोड़े हैं, वैसे ही जैसे दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, वैसे ही जोड़े बनाने आपको, ठीक है। तो पहला है आपका नाना नानी, दूसरा है मौसा, तो क्या होगा मौसी, फिर चाचा क्या होगा चाची, वेरी गुड, फिर मामा तो मामी, राजा रानी, हो गया, इजी था। अगला प्रश्न, नए शब्द बनाए। अब ये आपके कुछ शब्द दिए हैं, इनको चेंज करना है, चेंज करना है मतलब इनमें कुछ जोड़ना है, इनको बदल नहीं देना, बस इनमें कुछ जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, चढ़ का ना लगा दिया, चढ़ में ना लगा दिया तो नया एक नया शब्द बन गया, चढ़ना, ठीक है। वैसे ही पढ़ में हम ना लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ना, वैसे ही सुन में ना लगा देंगे तो सुनना, चल में ना लगा देंगे तो चलना, और लास्ट वाला बताओ करना, कर में ना लगा देंगे तो करना, ठीक है। ये सारे तो इजी वर्ड्स थे, मीनिंग भी पता है, चढ़ना, पढ़ना, सुनना, चलना, करना, है ना। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस ना लगाया और नए शब्द बना दिए। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे तो आपका अभ्यास कार्य पूरा होता है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस कहानी को पहली बात तो आपको याद करना है, ठीक है, याद करके अपने दोस्तों को सुनाना है या कक्षा में आप सुनाएंगे। फिर दूसरा काम क्या करोगे, अब इस कहानी को आप ऐसे एक्टिंग भी तो कर सकते हो ना, कोई राजा बन जाना, कोई रानी बन जाना, कोई ध्रुव बन जाना, ठीक है। आप सारे बच्चे मिलके इसको खुद से भी एक नाटक के रूप में कर सकते हो अपनी क्लास में, है ना, ठीक है। तो एक तो आप ये काम करोगे, उसके बाद आप सबको ये चांस मिलना चाहिए, ठीक है। आप खाली समय में कर सकते हो, अपनी आधी छुट्टी में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हमारा पूरा इस पाठ का अभ्यास कार्य खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आपके सुविचार दिया गया है पाठ के अंत में। क्या है? एक कहावत है ये। क्या है? कहावत है, नीचे लिखा है ना कहावत। क्या कहावत है? वाणी चांदी है, मौन सोना है। वाणी पार्थिव है पर मौन दिव्य है। वाणी मतलब बोली, हमारी आवाज़ जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो चांदी है, चांदी की तरह है, उसको चांदी बताया है। लेकिन जो मौन है उसे सोना बताया गया है ना। कई बार हम बिना कहे बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही हो और आप बहुत ज़्यादा उसमें और ज़्यादा बोलने लग जाओ तो आपके शब्दों से किसी को बुरा लग सकता है ना। वहीं अगर आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, वहाँ से हट जाओ, तो वहीं आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो जहाँ वाणी चांदी है तो मौन क्या है? सोना। अब वाणी पार्थिव है, पार्थिव मतलब जो पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है, वहीं जो मौन है उसे दिव्य बताया है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अलौकिक है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, भव्य है। अगर वाणी पृथ्वी है तो मौन जो है वो पूरा संसार है, पूरी सृष्टि है, ठीक है। यहाँ पे आपका पाठ खत्म हुआ। अब आपका आपकी एक छोटी सी कविता दी गई है पेज नंबर 89 पे, सिर्फ पढ़ने के लिए है ये केवल। शीर्षक है कविता का, पतंगों का मौसम। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनना, और साथ साथ में चाहो तो मेरे पीछे पीछे पढ़ भी सकते हो। तो मैं शुरू करूँ? पेज नंबर 89 पे आ गए सारे? चलो ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। पतंगों का मौसम। मौसम आज पतंगों का है, नवमे राज पतंगों का है, इंद्रधनुष की रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सबले डोर पतंगे, सुंदर सी चौकोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। उड़ी पतंगे बस्ती बस्ती, कोई महंगी कोई सस्ती, पर ना किसी में फूट परस्ती, उड़ा उड़ा सब लेते मस्ती। चली डोर पर बैठ पतंगे, इठलाती सी ऐठ पतंगे, नवमे कर घुस बैठ पतंगे, करे परस्पर भेंट पतंगे। हर टोली ले खड़ी पतंगे, कुछ छोटी कुछ बड़ी पतंगे, आसमान में उड़ी पतंगे, पेच लड़ाने बढ़ी पतंगे। कुछ के छक्के छूट रहे, कुछ के डोर टूट रहे, कुछ लंगी ले दौड़ रहे, कटी पतंगे लूट रहे। ये तालियां। अच्छी थी कविता, है ना? इस कविता को आप भी खुद से पढ़ना, और मैं तो कहूँगी इस कविता को याद भी कर लेना, बहुत सुंदर कविता है। अच्छा, आप जितनी आपकी किताब में कविता है बच्चों, आप उन सबको याद तो करते हो ना? याद करके घर में सुनाते तो हो? अगर किसी ने पूछ लिया कोई कविता सुनाओ तो आपको कविता आनी चाहिए, है ना? कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविता हैं आपकी किताब में, आप उन्हें ज़रूर याद करना, ठीक है? किसी और को नहीं सही तो अपने दोस्त को सुना देना, या तो साथ बैठकर साथ मिलकर याद कर लेना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हम आज का काम खत्म करते हैं। अगले ऑडियो में एक नई पार्ट के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सब खूब मस्ती करें, लेकिन बिना किसी को चोट लगाए और खुद को भी चोट ना लगाएं। चलो, अपना ध्यान रखना, हम फिर मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।